समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में रोजाना हम आपको देते हैं देश और दुनिया के समाचारों के साथ मौसम की जानकारी। इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं और कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में आपको बताते हैं। आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा। नमस्कार सुभद्रा।
Namaskar Vaishnavi, good morning to you. A very warm welcome to our listeners tuned in to us this October Wednesday morning. Stay with us friends and enjoy the program. And what do we have today Vaishnavi?
जी बिल्कुल, आज 93वां वायुसेना दिवस है। जाबाज भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना के अवसर पर प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। नवस्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना सदैव मोर्चे पर भारत की रक्षा करती आई है।
देश पुकारे जब सब को दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीमा था।
So we begin with some news headlines, Vaishnavi?
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वीं भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है। भारत मोबाइल कांग्रेस का विषय इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है। ये आयोजन डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम में 150 से अधिक देशों और 400 से अधिक कंपनियों के 150,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन ऑप्टिकल संचार, दूर संचार में सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार और 6G जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है नवाचार से रूपांतरण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the first phase of the Navi Mumbai International Airport today. Prime Minister Modi will reach Navi Mumbai around 3 p.m. He'll undertake a walk through the newly built Navi Mumbai International Airport. Thereafter, around 3:30 p.m. he'll inaugurate the airport. We have more from our correspondent.
Prime Minister Narendra Modi today will inaugurate Navi Mumbai International Airport and launch and dedicate various projects in Mumbai. He is on 2 days visit to Maharashtra on October 8 and 9. Although the airport will be formally inaugurated in October, commercial flight operations are expected to begin from December. This will be the second airport serving the Mumbai metropolitan region and is twice the size of the existing Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. The airport is being developed in 4 phases under a public प्राइवेट पार्टनरशिप। भावना, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 6ठा संस्करण कल मुंबई में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि 3 दिवसीय इस आयोजन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, नव प्रवर्तक और उद्योग विशेषज्ञ वित्तीय प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा के लिए एक साथ आ रहे हैं।
सम्मेलन का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्देश्य यह दर्शाना है कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस किस प्रकार एक अधिक स्मार्ट और समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकती है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है भारत AI एक्सपीरियंस जोन, जिसे NPCI और अमेरिकी कंपनी NVIDIA ने मिलकर तैयार किया है। सम्मेलन में 400 से अधिक प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
The World Bank has raised India's growth forecast to 6.5% for the financial year 2026 from its earlier projection of 6.3% in June, citing resilient domestic demand, strong rural recovery, and the positive impact of goods and services tax reforms. In its latest South Asia development update, the World Bank said that India is expected to remain the world's fastest growing major economy, underpinned by strong consumption growth. However, it downgraded the country's growth forecast to 6.3% for financial year 2027 on the back of the 50% tariff imposed by the United States. The World Bank has forecast growth in South Asia to be robust at 6.6% this year, however, projected it to slow to 5.8% in 2026, a downward revision of 0.6 percentage points from the April forecast. It added that region's prospects faced heightened downside risks from an uncertain global environment, socio-political unrest, labor market disruptions posed by emergency technology such as artificial intelligence.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आज से भारत की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री स्टार्मर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री स्टार्मर और प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में कल विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई में छठी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति करने तथा अलग अलग विषयों में पीएचडी में दाखिल के लिए परीक्षा का आयोजन होगा।
Going over to some sports news now, Vaishnavi. In the BWF World Junior Mixed Team Championships 2025, the Indian badminton team defeated Sri Lanka 45-27, 45-21 in the Group H clash to stay unbeaten at the National Centre of Excellence in Guwahati yesterday. Lalta Zuala Mar got the team off to a flying start, beating Kenneth Arugoda 9-2 in the boys' singles. Bhavya Chabra and Mithilesh P. Krishnan then extended India's lead to 18-6 in the boys' doubles against Sanuda Aryasinghe and Tisat Rupatunga. In the girls' singles badminton, Rakshita Shri faced a 3-8 deficit against Ranithma Liange. C. Lalram Sangha and Tarini Suri sealed the opening set 45-27 with a 9-6 win in the mixed doubles over Arugoda and Lianagi. India are on track to advance to the knockout stage as Group H toppers, with one group match remaining against the United Arab Emirates today.
ISSF विश्व चैंपियनशिप आज से ग्रीस के एथेंस में शुरू हो रही है। एशियाई ट्रैप चैंपियन नीरू डांडा और ओलंपियन अनंतजीत सिंह नरूका, मेराज अहमद खान और रायजा ढिल्लों सहित भारत की 12 सदस्यीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है। पदक विजेता इस साल के अंत में दोहा में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे।
एंड इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप today, Australia will face Pakistan at the R. Premadasa Stadium in Colombo. The match will begin at 3 p.m. Indian time. Last night, England defeated Bangladesh by 4 wickets at the Baraspara Cricket Stadium in Guwahati. England notch up their second win of the tournament, while Bangladesh have been handed their first defeat of the World Cup. After being invited to bat first, Bangladesh were bowled out for just 178 runs, with only 2 balls remaining in the stipulated 50 overs. Shobana Mostari was the top scorer with 60 runs, while Rabia Khan also remained unbeaten with 43 runs. For England, Sophie Eccleston bagged highest 3 wickets. In response, England made it a hard-fought chase, but Heather Knight's match-winning innings of 79 not out helped the side in securing victory. She also got the Player of the Match award for her unbeaten innings.
और सुभद्रा, अब रुक करते हैं प्रमुख महानगरों की ओर और जानते हैं वहां की हलचल, साथ ही वो मुख्य खबरें जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं।
यस यस वैष्णवी, स्टार्टिंग विद न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई। द सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई एट आईआईटी मद्रास लॉन्च्ड IndyCasa yesterday. This is a data set that will be useful for bias reduction, risk reduction and assessment in language models within the Indian context. Professor B. Ravindran, head of the Vadhvani School of Data Science and AI, IIT Madras, said that it offers around 2,500 human validated sentences designed to include stereotypes and their anti-stereotypical counterparts across caste, gender, religion, disability, and socioeconomic status. Among other initiatives, the center also launched an AI evaluation tool that provides a unified and automated framework to evaluate controversial AI systems in a consistent, transparent, and scalable way. He added that at present, there are no tools to evaluate AI systems deployed in the country. This tool connects directly with the conversational AI agents to simulate human interaction. Getting to Bengaluru now, the Karnataka government yesterday extended the midterm holidays for government and aided schools till October 18 to facilitate completion of the ongoing socio-economic and educational survey by the Karnataka State Commission for Backward Classes. The decision, taken at a meeting chaired by Chief Minister Siddaramaiah, comes as no district has achieved 100% completion of the door-to-door enumeration that began on September 22nd. Chief Minister Siddaramaiah said the Karnataka State Primary School Teachers Association had sought more time to finish the survey. While Koppal has recorded 97% progress, Dakshina Kannada and Udupi are lagging at 63% and 60% respectively. The Chief Minister said survey work across the state has not met expectations. We have another news from Bengaluru. The newly built Bengaluru-Chennai Access Control Highway is set to get its first rest and recreation centre for motorists. The foundation stone for the facility was laid on Monday at Iyandahalli near Bangarpet, close to Kola Gold Fields. Spread across 30 acres, the project, awarded wide space, will feature food courts, fuel stations, drive-through restaurants, a factory outlet mall, a mega play zone for children, a motel, and handicraft stalls. A key highlight of the centre will be a 144.9-foot-tall Hanuman statue planned at the site. Moving to Hyderabad now, Telangana state has launched its dedicated tourism police units, marking a significant step towards enhancing tourist safety and experience. A week-long induction program for the first batch of 80 personnel commenced at the National Institute of Tourism and Hospitality Management in Hyderabad. Organized by the Department of Tourism, the Orientation and Sensitization of Tourist Police program aimed at building capacity, strengthening visitor facilitation, improving the overall tourism ecosystem in the state. Addressing the participants, Additional Director General of Police, Law and Order Mahesh Bhagwat said the initiative reflects a joint effort between the police department and the tourism and culture department to ensure safety and hospitality across key destinations. The 80 tourism police will be deployed across 9 police commissionerates at major places of tourism attractions including Somasila, Anantagiri, Ramappa, Yadagiri Gutta, Pochampalli, Buddhavanam, Bhadrachalam and Hyderabad. And Vaishnavi, over to you now for rest of the news.
बिल्कुल, अब दिल्ली की ओर रुख करते हैं। राजधानी के दिल्ली हाट में खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कलाकार अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देना तथा खादी कारीगरों की आय में वृद्धि करना है।
इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें साड़ियाँ, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प वस्तुएं, आयुर्वेदिक उत्पाद, हस्तनिर्मित आभूषण, हथकरघा उत्पाद और खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दिल्ली, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित 18 राज्यों की खादी संस्थाएं और उद्यमी भाग ले रहे हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA से त्योहारी सीजन के दौरान द्वारका गोल्फ कोर्स में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सदस्यता पर 40% तक की छूट देने को कहा है। DDA ने बताया कि ये छूट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पहले 1000 सदस्यताओं के लिए मान्य होगी। और अब महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र श्रम विभाग ने मंगलवार को एक नई वेबसाइट labor.maharashtra.gov.in लॉन्च की, जो कारखाना मालिकों और श्रमिकों दोनों के लिए उपयोगी जानकारी का मंच उपलब्ध कराएंगी। श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने वेबसाइट का उद्घाटन किया और विभाग के नए चैटबॉट श्रमदूत का परिचय दिया, जो उपयोगकर्ताओं को तत्काल मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मंगलवार को मुंबई स्थित राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने घोषणा की कि मालवण तालुका स्थित नदेश किले को जल्द ही वैज्ञानिक उत्खनन किया जाएगा और रामगढ़ किले को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये संरक्षण योजना तैयार करने के लिए पुरातत्व विभाग सिद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र सहित भगवानगढ़ किले का भी सर्वेक्षण करेगा। और अब कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय की रुख करते हैं। उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक दल बुधवार को उत्तर बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल, उपमंडल अधिकारी और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। और सुभद्रा, मौसम की बात कर लेते हैं।
Yes, of course. I'll start with news from Chennai. It's expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum will be around 34. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 29 degrees. Hyderabad, again, is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 21 degree Celsius, maximum 31 degree Celsius. And rest of the news, Vaishnavi?
जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो आंशिक रूप से मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और तथा हल्की वर्षा भी हो सकती है। बात करें तापमान की तो न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का।
यस, एंड ऑफ कोर्स यू नो एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर इंडियन एयरफोर्स वेयर इन द सर्विस एंड डेडिकेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन IAF इज ऑनर्ड। एंड ऑफ कोर्स द डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh said that the air power has emerged as a decisive instrument of national security in today's uncertain global environment. Yesterday, in his address on the eve of 93rd Air Force Day, the Air Chief Marshal emphasized that Indian Air Force stands ready to respond to every challenge with speed, precision and determination. He said by launching Operation Sindoor, India gave a befitting reply to the enemy of the Pahalgam terror attack. The Air Chief Marshal underscored that the Air Force Day is dedicated to those air warriors who have protected the skies of the nation with sacrifice and diligence.
वायु सेना दिवस उन वायु योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने त्याग, बलिदान और कर्मठता से राष्ट्र के आकाश की रक्षा की है। 1932 में चार वापिती जहाज से शुरुआत करते हुए भारतीय वायुसेना आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसने हर युद्ध और संकट में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
Today we are honoring 93 years of courage and commitment. With wings of determination, our Air Force soars to protect and serve. Happy Air Force Day, friends.
अपने शौर्य, पराक्रम और सेवा की भावना के साथ वायुसेना भारतीय आकाशीय सीमाओं की रक्षा में तत्पर है और समय समय पर दुश्मनों को करारा जवाब देती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब जब प्राकृतिक आपदाओं और बड़े संकटों ने देश को घेरा तो भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने आसमान से मानवीय सहायता और आपदा राहत के दूत बनकर पहुंचे।
And moving on to more events, on this day in 1871, the Great Chicago Fire devastated downtown Chicago. By the time the blaze died out 2 days later, a large swath of the city had been devastated by, and some 300 people killed. And 1919 this day, the first transcontinental air race in the United States begins with 63 planes competing between California and New York.
और सुभद्रा 1919 में आज ही के दिन अहमदाबाद से यंग इंडिया पत्रिका का पहला अंक जारी हुआ जिसे महात्मा गांधी ने संपादकीय भूमिका में संभाला। ये पत्रिका ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने का माध्यम बनी।
And on this day in 1945, inventor Percy L. Spencer patented the microwave oven. He had noticed the effects of microwaves during an experiment when a candy bar had melted in his pocket. And also in 1948, this day, the world's first internal pacemaker was implanted. And 1982, Cats, based on Old Pussum's book of Practical Cats by T.S. Eliot, opened in Broadway and ran for nearly 18 years before closing on September 10, 2000.
और 1996 में कनाडा के ओटावा शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 50 देशों ने एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ये कदम युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में था।
And Vaishnavi, let's move on to some births and deaths now. बिल्कुल। Today is the birth anniversary of Japanese puzzle maker Maki Kaji, who is also called the father of Sudoku. Kaji was actually instrumental in popularizing it worldwide through his puzzle company, Nikoli. While the puzzle's concept has roots in a game by Leonard Euler, Kaji refined the game, gave a new name, Sudoku, and made it a global phenomenon. And today is the death anniversary, this is in 1963, of Chilakalapudi Sitarama Anjaneyalu, popularly known as CSR, was an Indian film method actor, thespian, best known for his works in Telugu and Telugu theatre. He was well known for Rama Paduka Pattabhishekam, 1932, Tukaram, 1938, and Balaji, 1939. And of course, he acted in many stage dramas, portrayed lead characters and mythological roles in over 175 movies. Besides acting, he was a national and social activist as well.
8 अक्टूबर वे तारीख जो हिंदी साहित्य के अमर सितारे मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि के रूप में हमेशा याद की जाती है। 1936 में जब धनपत राय श्रीवास्तव यानी प्रेमचंद इस दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने पीछे छोड़ दी एक ऐसी विरासत जो आज भी समाज के आईने की तरह चमक रही है। उनकी पहली साहित्यिक रचना जो गोरखपुर में लिखी गई कभी प्रकाशित ही नहीं हुई और आज खो चुकी है। ये खोया हुआ बीज ही था जिसे बाद में गोदान जैसी महान कृतियां फली फूली। इसी उपन्यास पर 1963 में एक फिल्म भी बनी जो उनकी रचनाओं की लोकप्रियता का एक जीवंत उदाहरण है। प्रेमचंद आम आदमी के जीवन के संघर्षों को अपनी कहानी के माध्यम से दुनिया के सामने रखते थे। प्रेमचंद नहीं रहे लेकिन उनकी कलम की धार आज भी समाज को काटती छाटती है, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। उनकी स्मृति में हम वादा करें कि उनकी रचनाओं को न केवल पढ़ेंगे बल्कि जिएंगे भी।
एंड 1917 दिस डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जॉर्ज हॉरेस वेब, अ ब्रिटिश पियानिस्ट कंसिडर्ड बाय मेनी एज द फादर ऑफ द ट्रेडिशनल जैज मूवमेंट इन ब्रिटेन। Horace grew up with a love of early jazz recordings, principally those made by New Orleans musicians. George Webb was the father of traditional jazz in the United Kingdom also. His Dixielanders, formed in 1940s, paved the way for generations of musicians who followed. You're listening to this blues, this is Riverside Blues.
माँ भारती के वीर सपूत और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 46वीं पुण्यतिथि है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश को झकझोर दिया जिससे भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जनज्वार उमड़ पड़ा। इस आंदोलन ने उन्हें समाज सेवा के लिए लोकनायक की उपाधि दिलाई। उनका जन्म बिहार के सारण जिले के सीताबदीरा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि क्रांति कभी थमती नहीं, बस नई दिशा लेती है।
एंड फ्रेंड्स, अमेरिकन कंट्री सिंगर ऑफ द 70s एंड 80s whose songs hit the mainstream made her a superstar. Susan Ray celebrates her birthday today. As a girl, she joined the church choir and worked as a disc jockey and on television, performing here and there. And after several albums with country superstar Buck Owens, Ray went solo. Her biggest solo She biggest year as a solo artist came in 1971 when she issued three consecutive top hits, Pity Pity Patter, I've Got a Happy Heart, and her global hit, which you're going to listen to right now. This is LA International Airport.
Standing in that silent hall, waiting for that final call, says he doesn't love me anymore. Shaking hands, I pack a bag, trembling voice, I call a cab. Slowly I start walking to the door. The cab arrives, he blows his horn. I stumble out in the early morn, tell him of the place I've got to go.
आज पुण्यतिथि है केदारनाथ साहू की, जो भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। 1921 में झारखंड के सरायकेला में जन्मे केदारनाथ साहू बचपन से ही सरायकेला छऊ नृत्य की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। ये नृत्य जो जनजातीय परंपरा से निकला, उनके हाथों में वैश्विक कला बन गया। सरायकेला छऊ के अग्रणी नृत्यक केदारनाथ साहू को 2005 में पद्मश्री सम्मान मिला था। आज भी सरायकेला के मंचों पर छऊ नृत्य की थाप बजने पर केदारनाथ साहू की यादें ताजा हो जाती हैं।
Jean Hernandez, alias Bruno Mars, a multi-talented musician, celebrates his birthday today, friend. He turns 40 today. And of course, he's known for his stage performances, for his smooth, soulful voice and catchy, retro-inspired pop sound, showmanship. And besides, he's earned 16 Grammy Awards in his music career that began in the 90s. Yes, friends, Bruno was just 5 years old when he started performing. He was called Little Elvis. He has a pretty little tune. It's going to be coming your way right now. This is called Just the Way You Are.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay?
आज पुण्यतिथि है कमलापति त्रिपाठी की। वे एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, और साथ में हिंदी साहित्य की दुनिया में भी उन्होंने अपनी अमर छाप छोड़ी। बचपन से ही संस्कृत और हिंदी के प्रति उनका लगाव गहरा था। उनके अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की और आगे चलकर प्रमुख हिंदी अखबारों के संपादक भी बने। स्वतंत्रता संग्राम में कमलापति त्रिपाठी ने कोई कसर न छोड़ी। 1921 के असहयोग आंदोलन से उनका आगाज हुआ और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कमलापति त्रिपाठी की जिंदगी समर्पण की मिसाल थी। पत्रकारिता, साहित्य और स्वतंत्रता सब में उनकी अमर छाप है।
And friends, there are several Hollywood birthdays today. Matt Damon, Sigourney Weaver, Chevy Chase, Australian actor-comedian Paul Hogan. And today is also a birthday of American gospel singer C.C. Winans, whose real name is Priscilla Marie Winans. She was born in Detroit, Michigan, American gospel singer. And Vaishnavi, you have something important?
Yes, of course. तो हम इसी में आगे चलते हैं।
Yes, of course.
तो राजकुमार, जो सिनेमा का वो सितारा जिन्होंने अपनी गहरी और दमदार आवाज से दर्शकों के दिलों पर राज करते थे, आज अपने जन्मदिन पर फिर से यादों की स्क्रीन पर चमक रहे हैं।
नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए।
बॉलीवुड के इस जाने की जिंदगी संघर्ष, सफलता और अनोखे अंदाज की मिसाल है। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले वे बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, पर फिर फिल्म निर्माता बलदेव राज चोपड़ा की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें फिल्मी की दुनिया में ले आए। ये फिल्म उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत होती है 1952 में रंगीला से। फिर उनकी लेकिन असली धमाका जो हुआ वो 1957 में महबूब खान की महाकाव्य नाटक मदर इंडिया से।
मतवाला जिया डोल पिया तूने घटा थाए रे बादल,
करना है तो कर प्यार न डर बीती।
राजकुमार ने करीब 70 हिंदी फिल्मों में काम किया और चलते चलते उन्हीं का एक प्रमुख फिल्म का एक गीत सुनते हुए चलते हैं।
कहां शुरू कहां खत्म।
इसके साथ ही वक्त हो चला है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का, तो वैष्णवी और सुभद्रा को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने का।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, नमस्कार।